7879।
टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स LEDs और होम अप्लायंसेस की हॉटेस्ट और ब्रांडेड रेंज के साथ 0% फाइनेंस गारंटी और लोएस्ट प्राइसेस और फ्री डिलीवरी इन GTA। तो इंतजार कैसा, अभी विजिट करें टेली टाइम ब्रैम्पटन 280 रदरफोर्ड रोड या स्प्रिंगडेल स्क्वायर शॉपिंग सेंटर या इटोबिको 1770 एल्बियन रोड या 9909 मार्कम रोड। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9054551666। टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स।
डेंटिस्ट्री ऑन रिजवे बाय डॉक्टर नाजिया रहमान, अब मिसिसागा में दूसरी लोकेशन के साथ, रूट केनाल, व्हाइट टीथनिंग, इम्प्लांट डेंटिस्ट्री, डेंटल क्राउन्स, विजडम टूथ रिमूवल, क्वालिटी डेंटल केयर पूरी फैमिली के लिए, एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स, वॉक इन एंड इमरजेंसी, एक्सेप्टिंग कनाडा डेंटल केयर प्लान। डेंटिस्ट्री ऑन रिजवे बाय डॉक्टर नाजिया रहमान, 3465 प्लेटेनियम ड्राइव, यूनिट 76, मिसिसागा। फोन 9058200900, 9058200900। अब मॉर्गेज की परेशानी हुई खत्म कीस्टोन फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ। कमर्शियल मॉर्गेज, रेजिडेंशियल मॉर्गेज, प्राइवेट मॉर्गेज, कंस्ट्रक्शन मॉर्गेज, रीफाइनेंस, रिन्यूअल, सेल्फ एम्प्लॉयड और सेकंड मॉर्गेज, ऑल योर मॉर्गेज सॉल्यूशंस। कीस्टोन फाइनेंशियल एक्सपर्ट की जैस्मीन परमार से आज ही कॉन्टेक्ट कीजिए। इनके पास है मॉर्गेज इंडस्ट्री में सालों का तजुर्बा और आपकी मॉर्गेज का आसान हल। जैस्मीन परमार, प्रिंसिपल ब्रोकर। कॉल टुडे 6479235659, 6479235659। स्पीक योर लैंग्वेज इंग्लिश, पंजाबी एंड हिंदी, लाइसेंस नंबर 13654।
पाई सस्ता लाला, इंज कर तू 6 दी बजाय 5 ले ला। ओहो सल्ला भैन जी, कैनेडा आ गए तुसी, इत्थे सब्जियां पिछे बारगेन करन दी लोड़ नहीं, क्योंकि एशियन फूड सेंटर ते वधिया फ्रेश ग्रोसरी, फ्रूट्स, दाला, सब्जियां सब कुछ बहुत घट कीमत विच मिलदा।
ए आ जी एशियन फूड सेंटर, इंडो कैनेडियन ग्रोसरी, फल फ्रूट, दाला, सब्जियां दी वन स्टॉप शॉप। नाले साडे कोल इंडिया वाले भांडे, प्लेटां, बाटियां सब कुछ मिलदा। साडी सारियां ही लोकेशंस ते सोहणियां सोहणियां रखड़ियां दी बेशुमार वैरायटी भी है। एशियन फूड सेंटर दियां ओंटारियो विच 9 लोकेशंस विचों जिथे मर्जी आ जाओ।
वेलकम बैक तमाम सामीन जो हमें सुन रहे हैं 770 एम डायल पर प्रोग्राम साजो आवाज। मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और अब तक की गर्मा गर्म, ठंडी मीठी, खट्टी मीठी जो भी खबरें हैं, मतलब अब तक की जितनी भी खबरें वो लेकर शाजिया मलिक साहिबा स्टूडियो में बरामद हो गई हैं। सही वर्ड यूज किया, मतलब बरामद हो गई हैं। तो आइए उनको सबसे पहले, क्योंकि उनके लिए एक ना प्रोटोकॉल देना पड़ता है, म्यूजिक बजाओ, उसके बाद फिर उनका जो है वो एक तंबी बांधो, उसके बाद इनको कहो जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसी हैं आप?
WS मेरे अजीज, हम बताओ हम ठीक हैं, ये तुम भी क्या है?
खबरें सुनाइए। मैं एक ट्यूशन सेंटर खोलूंगा।
अच्छा ठीक है।
मुझे सब समटाइम, जैसे अभी करामा साहब आए थे ना,
हाँ।
वो पिछले,
नहीं तो तुम थोड़ा इजी उर्दू बोला करो ना, ये तुम भी क्या होता है?
वो क्या गया, पिछले तकरीबन 10 साल तो हो गए मुझे यहाँ आए हुए,
हाँ।
और इन 10 सालों में जितना मैंने पंजाबी के वर्ड सीखे,
हाँ।
मैं उतने ही उर्दू के वर्ड भूल गया हूँ।
अच्छा,
तो ये कभी कभी कुछ वर्ड ऐसे जहन में आ जाते हैं, जब गुफ्तगू शनीद होती थी पाकिस्तान में, कराची में या कहीं पर भी, तो आम बातचीत में इस्तेमाल हो जाते थे, लेकिन अब तो होने लगे, ओ तुसी कैसे हो, की हाल है, चंगा, अब ये माहौल बन गया है। अक्सर जब मैं पाकिस्तान में फोन करता हूँ अपने दोस्त यारों को, तो उनको फील होता है कि यार तू वाकई कनाडा गया।
नहीं बोलो, मैं कनाडा नहीं, मैं कनाडा,
वो
कनाडा गया हूँ।
वो मेरे दोस्त जो लाहौर में बेस्ड है, उनको तो बहुत हंसते हैं मुझ पर, ओए आमिर भाई को देखो पंजाबी बोल रहा है।
क्योंकि बोलो मैं कनाडा नहीं, कनाडा आया हूँ।
तो उर्दू में कुछ वर्ड्स ऐसे थे
जो अब जहन से निकलते जा रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कभी, जैसे मैंने उस दिन गलत यूज कर दिया तो वो गलत को मैंने गलत बोल दिया, तो हमारे उस्ताद है उन्होंने मेरी पकड़ाई कर ली थी, उन्होंने कहा कि भाईजान आपके मुंह से तो ये नहीं निकलना चाहिए। मैंने कहा वो शाजिया जी से कभी कभी हंसी मजाक करने के लिए कैंची वाला जो कैंची बोलती है वो इनसे हल्की
नहीं तो कैंची होता है ना, तो तुम क्यों
कैंची होता है कैंची
कैंची
हाँ वही होता है जो आपके आपका कौवा और कैंची
हाँ एक ही है
एक ही है एक ही है,
एक ही है।
देख रहे हैं ये है फेडरल के रहने वाले लोग, इनके लिए
ये इतना ओल 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 करके कौन बोलता है अभी ये तो
कहते हैं ना कि आपका जो काम है आप वो करिए, आपके लिए क्रेडिट, या आपको क्रेडिट यही बहुत जाता है कि आप अंग्रेजी में खबरें लिख के आती हैं और उसको जिस जबान में खबरों को इन खबरों को जो आप पढ़ती हैं इन खबरों के ऊपर से जो लोग उठते जो जो दफन है ना इन खबरों में वो खबरें आपको छोड़ेंगे नहीं, जिस तरह से आप जो खबरें पढ़ती हैं वो भी लोग मुझसे ऐसा सवाल कहते हैं जी इनकी जो खबरें हैं वो उनमें से मुर्दे कब उठेंगे लेकिन
उठेंगे एक दिन
रेट तो आपको ही जाता है आप इन खबरों को जो खबरों में तब्दील करती हैं। मेरी भी उर्दू खराब हो गई इस सिलसिले लेकिन बहरहाल
जिंदगी का मकसद ही है तुम्हारा उर्दू खराब करना।
अच्छा अच्छा रहता है जैसे कहते हैं ना कि अलिफ और नून में जो एक अलिफ नून आता था ना प्रोग्राम उसमें
अच्छा तुमने मुझे नून कहा है और अपने आप को अलफ कह रहे हो, आमिर तुम कितने कोई खराब हो हैं,
उसमें कहने की जरूरत क्या है, लाखों लोग देख रहे हैं आपको।
ठीक है चलो कहने की जरूरत भी नहीं,
कौन अलिफ है और कौन नून है।
हाँ हाँ
मैं बिल्कुल सीधा आप जलेबी की तरह
नहीं ये अब बात घुमाने की जरूरत नहीं है। अलिफ नून ये होता था, एक पतला होता था और एक मोटा होता था, तो तुमने मुझे इनडायरेक्टली मोटा कहा है, तुमने मेरी बॉडी गेमिंग की है।
नहीं,
अब इसको मैं इशू बनाऊंगी, अब मैं मैनेजमेंट को बताऊंगी
अलिफ की तरह
खुद को अलिफ बोल रहे हो,
नून की तरह जलेबी।
हाँ नून की तरह जलेबी नहीं होता, नून का मतलब है मोटा जो उस ड्रामे में था मुझे पता है, वो मैंने देखा हुआ है,
ड्रामे देखा हुआ।
हाँ मैंने देखा है अलिफ और नून, उसमें अलिफ पतला वाला था।
अच्छी जवानी होगी जब ये आया था
तो मैंने कब का मेरा बचपन था,
हमने तो बाद में रीटेलीकास्ट देखा था कभी।
हाँ।
तो हमें तो कोई नहीं आया।
हाँ।
लेकिन आपके जो मामलात हैं वो सीधे चलते रहते हैं।
हाँ।
खबरों का सिलसिला अगर हम शुरू करते हैं अभी आप जो है वो थ्रोन स्पीच भी आज आपने सुन ली होगी, पूरी देख ली होगी, तो उस पर भी अभी बात करेंगे आगे चल के। फिर पाकिस्तान की गर्मा गर्म खबरें जैसे अभी दरामद हुई थी प्रोग्राम के दौरान भी, और दो चार इन्होंने अच्छे लुक में डाले, इन्होंने कहा कि जी जो बंदे के जो आइडियोलॉजी होती है उससे पीछे नहीं हटता है, चाहे कायदे आजम हो जिना साहब हो और
अच्छा कायदे आजम में और जिना साहब में डिफरेंस
मतलब मोहम्मद अली जिना साहब हो ऐसे कर लें और गांधी साहब हो नेल्सन मंडेला साहब हो और वो किंग लूथर मार्टिन लूथर साहब
लूथर
वो साहब हो किंग किंग वो
मार्टिन लूथर किंग
वो अपने
आइडियोलॉजी नहीं हट कुछ भी हो। देखो
इस पर बात करेंगे खबरों के बाद,
खबरों का
मसला बहुत है और इस पर मैं डिबेट कर सकता था उस वक्त भी क्योंकि बात किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में हो रही थी, तो वो हम खबरों के बात करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है। इंशाल्लाह फिर आपकी कॉल का सिलसिला भी जारी रखेंगे। 416-620-1778 हमारा नंबर है। तो चलते हैं इस वक्त गर्मा गर्म खबरों की तरफ।
ओके जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय राजा बादशाह जी। राजा बादशाह जी के पास आपने जाना है, आमिर का नाम लेना है, आपके 1775 बचेंगे, फिर आप यूरोप के टूर पे निकल जाना, ठीक है जी। तो आपको ऑटो और होम इंश्योरेंस देते हैं और उनका नंबर है 6472903773। और अगर आपने अच्छा अपना ट्रक का हेल्थ रखना है तो आपको QTL के पास जाना पड़ेगा, क्विक ट्रक ल्यूब। क्विक ट्रक ल्यूब जो है नैपनी के लोकेशन पे आप जाओ, एक तरफ से एंटर हो, 15 मिनट में वो आपके जितना बीमारी है आपके ट्रक का वो फाइंड आउट करके उसको ठीक करके दूसरे तरफ से आपको 15 मिनट्स में निकाल देंगे। इनका नंबर है 1519622060। और अगर आपने अच्छा खाना खाना है तो आप फैसल चट्ठा साहब के पास जाओ, विलेज टेस्ट में। विलेज टेस्ट के अब दो रेस्टोरेंट्स हैं, एक मिसेस सागा में है और दूसरा जो है वो ओकविल में है। इनका नंबर है 6477744888। और अगर आपने अच्छे कपड़े पहनने हैं तो आप स्पेयर एंड मके पे जाएं, और ये ब्रिटानिया रोड पे अब आ गया है इनका नया लोकेशन, तो आप उनके पास जाके और अच्छे जो हैं इटालियन फैब्रिक के कपड़े पहन सकते हैं। 775 ब्रिटानिया रोड वेस्ट, इनका यूनिट का नंबर है 7B। इनका नंबर है जो फोन का वो है 9056703388। और अगर आपने अपना दांत अच्छे कराने हैं तो आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर नाजिया रहमान के पास, उनके भी दो डेंटिस्ट्री क्लिनिक्स है, एक मिसेस सागर रोड पे है और एक जो है रिजवे प्लाजा में है। तो अगर आपको उनसे कुछ भी दांतों का करवाना है, इम्प्लांट्स या क्राउन्स या कुछ टूथ रिमूवर्स वगैरह या जो भी वाइटनिंग कराना है, आप उनको कॉल कर सकते हैं 9058721100। और जनाब अगर आपने अप्लायंसेज बंडल में लेना है तो फिर आप जाओ हमारे सुल्तान भाई के पास, 801 बोवे ड्राइव वेस्ट पे है और बहुत ही जो बाकी का जो मार्केट है उससे कम प्राइस पे आपको बंडल डील्स इलेक्ट्रॉनिक्स का मिलता है। आप इनको कॉल कर सकते हैं 9054502828। अच्छा ज्वेलरी चाहिए आपको इंडिया पाकिस्तान सिंगापुर के हाई एंड डिजाइन के साथ तो असलम भाई के पास पायल ज्वेलर्स पे जाओ आप। और पायल ज्वेलर्स जो है वो भी ब्रैम्पटन में है, 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव और इनका नंबर है 9057907879। आप जा सकते हैं और इनसे बोल सकते हैं अच्छा ज्वेलरी आपको, कोई भी आपका फैमिली का ओकेजन है तो आप इनसे ले सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा जनाब ये कनाडा की खबरें हम शुरू करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन नियरली हाफ सेंचुरी जो किंग चार्ल्स III है यानी कि जो मोनार्क हैं, उन्होंने कनाडा का स्पीच फ्रॉम थ्रोन जो है वो आज दिया और प्रिटी मच उन्होंने ले आउट किए हैं कॉर्नी साहब के जो गोल्स रहेंगे अपकमिंग पार्लियामेंट्री सेशन के लिए। किंग चार्ल्स III और क्वीन कमिला, हमने आपको कल ही बताया था कि वो कल आए थे कॉर्नी साहब के रिक्वेस्ट के ऊपर। उन्होंने जो है वो कनेडियंस को एड्रेस किया सेनेट के चेंबर से और अपनी ओपनिंग स्पीच के ओपनिंग पे ही उन्होंने एक्नॉलेज किया कि ये लैंड जिसके के ऊपर सेनेट बनी हुई है ये टेरिटोरी है ऑफ एल्गोनक्विन अनीश नैगबेग, ये जो फर्स्ट नेशंस हैं उनका ये टेरिटोरी है। उन्होंने अफर्म किया कि कनाडा जो है उसका वर्ल्ड स्टेज पे बड़ा स्ट्रेंथ है और कनाडा यूएस जो है उनको एक नया इकोनॉमिक सिक्योरिटी टाइज जो है शुरू करना चाहिए क्योंकि ये दोनों नेशंस के लिए जो है बेनिफिट्स लेकर आएगा। उन्होंने कहा जी कि ये जो न्यू अलायंसेज है ये न्यू इकोनॉमी जो है वो बिल्ड करेगी आप दोनों को और ये बड़े फख्र का बात है। उन्होंने कहा कि कनाडा जो है वो सारी दुनिया के अंदर अपने वैल्यूज के लिए अपना एक एग्जाम्पल जो है वो सेट कर रहा है और ये जो एंथम जो पढ़ा गया वहां पे ओ कनाडा, उन्होंने कहा ये एंथम जो है ये भी हमें रिमाइंड करता है कि यू आर ट्रू नॉर्थ एंड यू आर स्ट्रांग एंड फ्री, यानी कि वही जो रेटरिक है ट्रम्प साहब का कि मैं 51st स्टेट बनाऊंगा उसके ऊपर ये कह रहे थे कि नो यू आर ट्रू नॉर्थ यू आर स्ट्रांग एंड फ्री। और इसके साथ साथ उन्होंने क्राइम्स के ऊपर जो ट्रम्प साहब के जो दूसरे जो मुद्दे हैं उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि कनाडा जो है वो 1000 मोर आरसीएमपी जो है उनको हायर करेगा और ये जो फायर आर्म्स के लाइसेंसिंग जो है उसको चेंज करेगा, स्ट्रेंथन करेगा एनफोर्समेंट ऑफ येलो रेड फ्लैग। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि कोऑपरेशन आप करेंगे प्रोविंसेस और टेरिटोरीज के साथ इन द नेक्स्ट 6 मंथ, यानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो करेगी और इसमें जो है लास्टिंग किस्म के जो है वो रिजल्ट्स भी आएंगे और चीजें जो है आप देखेंगे। उन्होंने कहा जी कि 70 ईयर्स से जो है कनाडा एक सॉवरन स्टेट है जब फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स पार्लियामेंट ओपन्ड और फिर कनाडा में ड्रामेटिक चेंजेस आए और फिर उन्होंने अपनी मदर के बारे में भी क्वीन एलिजाबेथ II जो है उनके बारे में भी बात किया जो उनका विजिट था 1957 का। उन्होंने कहा कि लिबरल गवर्नमेंट जो है वो कनाडा का जो नेचुरल ब्यूटी है जो नेचर है उसको भी प्रिजर्व करेंगे। यूके के कॉलोनाइजेशन से जो कनाडा में शुरू हुई थी 1670 में उस वक्त जो है क्राउन ने ग्रांट किया था हडसन बे कंपनी को कि उसका जो लैंड्स है उसके ऊपर जो है उसका राइट हो सकता है और ये सारी लैंड जो थी ये थी क्यूबेक ऑन्टेरियो मैनिटोबा सस्कैचुअन अल्बर्टा और नूनावेट के अंदर। उन्होंने होप किया कि जो कंट्री है वो यानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो कम्युनिटीज के साथ बात करेगा और खासतौर पे जो फर्स्ट नेशंस हैं और ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की तरफ जाएगा। रेड रिवर उससे पहले जो थी उनके यानी कि ये स्पीच थी उससे शुरू होने से पहले रेड रिवर मेटिस जो फिडलर है मॉर्गन ग्रेस 18 ईयर्स उनकी एज है उन्होंने परफॉर्म किया था रॉयल्स के लिए सेनेट के अंदर और ट्रूडो साहब भी आज वहां पे देखे गए और इस इवेंट पे और कुछ अपने जो हैं वो जानने वाले यानी कि जो जिनके साथ जरा कैबिनेट में प्यार था पहले उनके साथ बात करते हुए देखेंगे। इससे पहले एक लोकल फर्स्ट नेशन ड्रम ग्रुप जो था वो भी ओटावा रिवर सिंगर्स जिनको बोला जाता है उन्होंने भी परफॉर्म किया। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है मॉर्क कार्नी और उनकी वाइफ जो है डायना फॉक्स उन्होंने जो है रॉयल्स को ग्रीट किया था और फुल मिलिट्री इनको ऑनर्स दिए गए थे, रॉयल सल्यूट दिया गया था, 100% गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था फ्रॉम 3rd बटालियन ऑफ रॉयल कनाडा रेजिमेंट और फिर रॉयल्स जो हैं उनको एस्कॉर्ट किया गया था टू सेनेट इन स्टेट लेंडू 4-व्हील ये ब्लैक एंड पर्पल चेरियट है और इसके अंदर बहुत सारे एम्बेसडर्स और हेड्स ऑफ द स्टेट और गवर्नर जनरल और दूसरे हाई प्रोफाइल लोग जो है उनको सेनेट में लेके जाया जाता है। ये कैरेज जो है गुजरा वेलिंगटन स्ट्रीट टू पार्लियामेंट हिल और इट वॉज सराउंडेड बाय 28 RCMP हॉर्सेस। किंग जो थे वो फिर किंग चार्ल्स वो इससे पहले गवर्नर जनरल मैरी साइमन से भी उनके मीटिंग हुई थी और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले जो है रॉयल्स ने पार्टिसिपेट किया है ट्री प्लांटिंग सेरेमनी में जो कि शो करता है फ्रेंडशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। ये जो ट्री है ये ब्लू बीच है और ये नेटिव है टू सदर्न ऑन्टेरियो। जो किंग चार्ल्स ने अभी तक 5 ट्रीज प्लांट कर चुके हैं रेडियो हॉल के एरिया के अंदर और लेकिन ये दोनों का ये जो कपल है यानी कि किंग और क्वीन उनका ये सेकेंड ट्री प्लांटेशन था और उससे पहले जब ये लोग जा रहे थे सेंट की तरफ तो रास्ते में जब लोगों से मिल रहे थे तो जो क्वीन कैमिला है उनको लोगों ने रेड एंड व्हाइट फ्लावर्स भी दिए जो कि रिप्रेजेंट करते हैं हमारा फ्लैग जो है रेड एंड व्हाइट उसको। तो काफी इवेंटफुल इनके जो है कल से टाइम जो है वो चल रहा है। ओवर 8,000 हडसन बे के एम्प्लॉयज जो हैं विच मेक अबाउट 89% ऑफ द वर्क फोर्स वो अब 1 June से बिल्कुल आउट ऑफ जॉब रहेंगे क्योंकि तमाम स्टोर्स जो है वो बंद कर रहे हैं और अनदर 899 जो हैं वो June 15 को उनको निकाला जाएगा। ये हडसन बे के 9,364 एम्प्लॉयज थे 96 स्टोर्स में और 4 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में और हेड ऑफिस जो था उसने फिर फाइल किया था क्रेडिटर प्रोटेक्शन के लिए मार्च में और उसके बाद फिर लिक्विडेशन सेल्स जो थे वो शुरू हो गए थे। तो अब ये लिक्विडेशन जो हैं ये खत्म हो जाएंगे लेकिन 15 June तक ये 58 कॉरपोरेट एम्प्लॉयज 10 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एम्प्लॉयज जो हैं वो रहेंगे और उसके बाद फिर ये कम्प्लीटली जो है वाइंड अप कर लेंगे अपने ऑपरेशंस। एक रिपोर्ट आई है जी और ये कहती है इक्विफैक्स कनाडा की कि लोग जो हैं कैनेडियंस वो अपने मॉर्गेजेस ऑटो लोन्स और क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स जो हैं वो नहीं करते जा रहे हैं क्योंकि इकोनॉमी में बहुत सारा अनसर्टेनिटी है अनएम्प्लॉयमेंट बेतहाशा है हाई फूड और हाउसिंग कॉस्ट है। 1.4 मिलियन कंज्यूमर्स जो हैं उन्होंने मिस किए हैं अपने क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 दैट इज एन इंक्रीज ऑफ 146,000 फ्रॉम 2024। 35 एंड अंडर जो है उन्होंने किए हैं ऑटो लोन पेमेंट्स विच इज अप 30% फ्रॉम 2024। 28% होम ओनर्स जो है उन्होंने स्विच किए हैं लैंडर्स ताकि उनको बेटर इंटरेस्ट रेट जो है वो मिल सके। 46% मूविंग बिटवीन बिग 5 बैंक्स उन्होंने इसी के लिए कि हमको कोई अच्छी जो है वो डील मिले ऑटो और होम की मॉर्गेजेस की भी। मॉर्गेजेस जो है वो सबसे ज्यादा मिस की गई हैं ऑन्टेरियो के अंदर। इसके अलावा डेजा डे जो है उसने भी कहा जी कि इन द लास्ट 25 इयर्स होम के प्राइसेस जो हैं वो तो वैसे राइज किए हैं 320% और एवरेज डिस्पोजेबल इनकम भी लेकर 110% इंक्रीज किए हैं लेकिन फिर भी लोग जो है इस वक्त मुश्किल फील कर रहे हैं अपना मॉर्गेज और ये बाकी के जो है वो बिल्स देने क्योंकि जाहिर है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बेतहाशा है। जो नॉर्दर्न पब्लिक रेडियो है अमेरिका में और 3 ऑफ इट्स लोकल स्टेशंस उन्होंने आज सू किया है ट्रंप साहब को क्योंकि ट्रंप साहब ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया था टू कट फेडरल फंडिंग क्योंकि उन्होंने कहा जी कि ये इसको जो है हम पैसे नहीं देंगे क्योंकि जाहिर है कि वो इनके ट्रंप साहब की पॉलिसीज के अगेंस्ट जो है वो नहीं चलते हैं। तो इसके ऊपर रेडियो ने कहा कि ये इलीगल है। NPR जो है ये आज लेकर गया है लॉ सूट इसमें फेडरल कोर्ट में वॉशिंगटन में। इसके जो बाकी के जो सिस्टर कंसर्न हैं वो है कोलोराडो पब्लिक रेडियो एस्पन रेडियो पब्लिक रेडियो एंड क्यूटे इंक और इन्होंने कहा जी कि ये जो इन्होंने स्लैश किए हैं ये वायलेट करते हैं यानी फंड्स जो स्लैश किए हैं ये वायलेट करते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट को और जो है ये बिल्कुल इनका बायस जो है ये शो करता है। तो जाहिर है कि हम समझ सकते हैं इट इज वेरी वेरी क्लियर कि NPR जो है वो कंटेंट नहीं जनरेट करता जो प्रेसिडेंट ट्रंप को लाइक करता है तो हमारे डिसलाइक के लिए हमको ये किया गया। इसके साथ साथ आज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर से अनाउंस किया है कि $100 मिलियन हार्वर्ड के लिए और हम कट कर रहे हैं। इससे पहले भी आपको पता है $3 बिलियन इनका कट कर चुके हैं। उन्होंने कहा जी ये सारे का सारा पैसा हम डायरेक्ट करेंगे ट्रेड स्कूल्स की तरफ। तो भाई जान आप अपना ही नुकसान करेंगे। ये जो बड़ी आईवी लीग यूनिवर्सिटियां होती हैं ये बड़ी बड़ी रिसर्च करती हैं रिसर्च के बड़े बड़े फायदे होते हैं दैट्स वाई अमेरिका इज लीडिंग है ना। आप जो फंडिंग्स देते हैं इन यूनिवर्सिटीज को उनके अंदर रिसर्च होती है और रिसर्च में आप बड़े बड़े काम करते हैं और आप दुनिया के मास्टर बने हुए हैं। तो अगर आप अब इन बड़ी यूनिवर्सिटियों को फंड्स ही नहीं देंगे तो रिसर्च कैसे आएगी फिर। ऐसे है। यूरोपियन यूनियन जो है जी, उसने आज फाइनली अप्रूवल दिया है न्यू 150 बिलियन पाउंड्स का लोन जो है वो प्रोग्राम ये शुरू करना चाहते हैं टू हेल्प रीआर्म, क्योंकि इनका वरी बहुत ज्यादा बढ़ गया है कि यूएस जो है वो बिल्कुल अब रिलायबल नहीं रहा है। ये इस प्रोग्राम का नाम है सेफ बोरोइंग स्कीम, और इसमें उन्होंने कहा जी कि हम इसके अंदर जो है वो पैसे डालेंगे, और इसका मतलब ये भी है कि इसमें अब हर कंट्री जो है उसके डिफेंसिस को भी बूस्ट करना पड़ेगा। यानी कि पहले तो कहा जा रहा था कि अपने जीडीपी का 2% करें, अब हो सकता है कि 4-5% कहा जाए, तो जाहिर है कि कनाडा जैसे कंट्रीज के लिए तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर उनको यूरोपियन यूनियन के साथ ही रहना है। तो ये जो प्रपोजल्स है बाय ब्रसल्स, उन्होंने कहा जी कि ये हमने वैसे तो मार्च में दिया था, लेकिन अब हम इसको पुश कर रहे हैं ताकि फाइनेंस, ताकि डिफेंसेस जो है उनको बूस्ट किया जा सके। इसका जब वोटिंग हुआ तो जो 27 कंट्री ब्लॉक है उसके अंदर 26 ने फॉर में वोट किया और एक ने एब्सटीन किया, और उन्होंने कहा जी कि ये सारे के सारे फंड्स जो हैं ये हमको अब देखना है कि हमको स्पेंड कैसे करने हैं। 35% ऑफ द वेपन्स जो हैं वो हो सकता है कि जो ब्लॉक से बाहर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे आए, और वो कहते हैं जी कि पोटेंशियली ये अनलॉक करेगा 800 बिलियन यूरोज ऑफ डिफेंस स्पेंडिंग। ये जो अप्रूवल है ये आया है आफ्टर यूरोपियन यूनियन एंड यूके जो है उन्होंने अप्रूव किया है कि हम न्यू डिफेंस पार्टनरशिप जो है शुरू करेंगे इन द पोस्ट ब्रेक्सिट रीसेट, लेकिन यूके जो है उसको सेपरेट जो है वो डील भी साइन करनी पड़ेगी यूरोपियन यूनियन के साथ ताकि इस स्कीम का जो है पूरी तरह से फायदा उठा सके। आज बहुत ही डिफरेंट सुर नजर आए जर्मन चांसलर जो नए अभी चुने गए हैं फ्रेडरिक मर्ज के, और आज उन्होंने पहली बार बहुत खुल के क्रिटिसाइज किया ये जो मैसिव एयर स्ट्राइक्स हो रही है गाजा के ऊपर। उसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे फ्रेडरिक मर्ज फिनलैंड के अंदर, और काफी ये इनका जो है ये स्टैंस उसने आज शिफ्ट शो किया, और ये भी शो किया कि अब विलिंगनेस है टॉप रैंकिंग जर्मन पॉलिटिशियंस में कि इसराइल का ये जो खराब कंडक्ट है उसको ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इससे पहले जो जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर हैं जोएन वेटफुल, उन्होंने और जो कोएलिशन पार्टनर्स हैं सोशल डेमोक्रेट्स, उन्होंने भी कहा कि इसराइल को इमीडिएटली हॉल्ट कर देने चाहिए ये सारे आर्म्स जो दे रहे हैं, क्योंकि अगर हमने ना किए तो इसका मतलब है कि जर्मनी जो है वो कॉम्प्लिसिट है इस वॉर क्राइम्स के अंदर। वेटफुल जो है उन्होंने कहा कि जर्मनी जो है वो बिल्कुल उसको फोर्स नहीं किया जा सकता कि जो है वो इसराइल के साथ सॉलिडेरिटी के लिए वो खड़ा रहे, और हमको ये बिल्कुल आप नहीं बोल सकते हैं कि हम जो है एंटी सेमेटिक है, और क्योंकि ये जो इसराइल है ये इंस्ट्रूमेंटलाइज कर रहा है सारे कॉन्फ्लिक्ट को जिसका के हिस्सा हम नहीं अब बन सकते हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकना पड़ेगा और ये जो वॉरफेयर है गाजा के अंदर इसको भी रोकना पड़ेगा। अमिर अगर आप एक वो लगा दें इसमें जो वायर है क्योंकि ये बैटरी इसकी डर हो रही है। तो उन्होंने कहा जी कि जर्मनी जो है वो वैसे तो यूएस की तरह बहुत ही ज्यादा स्टॉन्च सपोर्टर था इसराइल का, लेकिन अब ये चीजें जो हैं ये बिल्कुल ठीक से नहीं चल रही हैं। मर्ज ने कहा कि मैसिव इसराइली मिलिट्री स्ट्राइक्स ये जो चल रही है तो ये लॉजिक जो है उसको भी डिफाई कर रही है, और जो कुछ यहां पर हो रहा है इट इज नो लॉन्गर कॉम्प्रीहेंसिबल। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अब जो है नतन्याहू साहब के साथ भी इस वीक में बात करूंगा और मैं उनसे पूछूंगा कि भई आप क्यों सीज फायर की तरफ जो है वो नहीं जा रहे हैं। तो ये आज काफी शिफ्ट देखा गया है जर्मनी के स्टैंस के अंदर। तकरीबन ओवर 1 मिलियन हज पिलग्रिम्स जो हैं वो जनाब अब सऊदी में पहुंच गए हैं, क्योंकि आपको पता ही है कल से हज जो है वो शुरू हो रहा है। सऊदी ऑफिशियल्स ने आज बताया ये डिटेल्स देते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मिनिस्टर ऑफ मीडिया हैं सलमान बिन यूसुफ अल दोसारी, उन्होंने कहा कि जी मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स जो है अभी आए हैं, उनके लिए बहुत सारे अरेंजमेंट्स जो है मक्का में किए जा रहे हैं ताकि वो हज जो है परफॉर्म कर सके, और हज जो है आपको पता ही है कि सेवरल डेज का होता है, बहुत सारी जगहों पे हाजियों ने रुकना होता है, पहले मक्का में, फिर जो है वो मिना में, मुजल्फा में, अरफा में, फिर उसके बाद जो है मदीना, वो बहुत सारे हाजी जाते हैं, तो काफी ज्यादा अरेंजमेंट्स इनको करने पड़ते हैं। तो तकरीबन 1 मिलियन हाजी अगर आप सोचे दुनिया से आ जाए तो कितने अरेंजमेंट्स चाहिए, लेकिन और आप बेशक एतराज कर सकते हैं सऊदी गवर्नमेंट पे, बट कूडोस टू सऊदी गवर्नमेंट के जो हज के अरेंजमेंट्स वो करते हैं वो मेरा नहीं ख्याल है दुनिया में और कोई कर सकता है। तो उन्होंने कहा जी कि ये हज जो है ये 8th day of Dhul Hajj को शुरू होता है एंड ये जो है लास्ट करेगा अंटिल द 13th of this month। منتھ یعنی کہ دلحج کا جو منتھ ہے اس کے اندر, اور اس سال جو ہے حج کہا جا رہا ہے کہ بٹوین جون 4 to 9 جو ہے وہ ہوئے گا. اسی لیے بہت سارے لوگ آپ دیکھ رہے ہوئے گے کہ آلریڈی سعودی جو ہے وہ جا رہے ہیں. کچھ لوگ تو اس لیے بھی پہلے جاتے ہیں کہ پہلے وہ مدینہ چلے جانا چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ مکہ میں آنا چاہتے ہیں. سعودی فورن منسٹر جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عربیہ کمیٹڈ ہے فار لانگ ٹرم انکلوسیو سسٹینیبل اکنامک گروتھ دیٹ انکلوڈز آل سیگمنٹس آف سوسائٹی پرزرو انوائرمنٹل بیلنس. یہ آج بات کر رہے تھے ایٹ دا انوگریل آسیان جی سی سی چائنا ٹرائی لیٹرل سمٹ کے اوپر, اور پرنس فیصل بن فرحان جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم ایکسلریٹ کرنا چاہتے ہیں لو کاربن کلین رینیویبل انرجی, اور ہم لیوریج کرنا چاہتے ہیں چائنا کا روڈ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے تاکہ سارے علاقے کے اندر کنیکٹیویٹی بنائی جا سکے اور آسیان اور جی سی سی کے بیچ میں انٹیگریشن لایا جا سکے. ہم چاہتے ہیں کہ ڈیجیٹل اکانومی کو بڑھائے, پارٹنرشپ جو ہے پبلک پرائیویٹ وہ بڑھایا جائے, ایک ریزیلینٹ اکانومی جو ہے اس کو بڑھایا جائے. انہوں نے کہا جی کہ یہ ساری کی ساری چیز کنگڈم کی جو ویژن ہے 2030 اس کے ساتھ میچ کرتی ہے, اور ہم تمام آبسٹیکلز ریموو کرنا چاہتے ہیں کمرشل ایکسچینج کے اندر, اور ہم ایک کمپریہنسو سولوشن بھی چاہتے ہیں پیلسطینین پرابلم کے لیے تاکہ ایک لیجیٹیمیسی جو ہے وہ آ سکے, اور انڈر یہ والا فورم اینڈ انڈر عرب پیس انیشیٹو. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یوکرین کے اندر وار جو ہے اس کو امیڈیٹلی روکا جائے. ہم ادھر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد ہم آتے ہیں آپ کے پاس لے کے انڈیا پاکستان انٹرٹینمنٹ اور سپورٹس کے خبریں لے کے.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
وہم و گمان سے دور دور, یقین کی حد کے پاس پاس.
پراپرٹیز ریزیڈینشل اور کمرشل, بائنگ اور سیلنگ,
انویسٹمنٹ پراپرٹیز یا پھر کنڈومینیمز ان دی ڈاؤن ٹاؤن ٹورنٹو,
وی ول ارینج یور مورگیج,
آلسو ا ہاؤس وارمنگ گفٹ.
سروس از آر پرائیورٹی,
کسٹمر سروس از آر پرائڈ. پلیز ایکسپیرینس دی ڈفرنس. آپ گھر خریدنا یا گھر کو بیچنا چاہتے ہیں, گھر کی ایویلیویشن کے لیے ایک دفعہ کال کیجیے عارفہ مظفر
6478962458 9862458.
چاندنی بینکویٹ ہال,
انٹیلیجنٹ چوائس لوکیشنز, ساؤنڈ سسٹم انوویشنز. چاندنی بینکویٹ ہال,
30 years of hospitality experience, corporate event, exhibition, expo or any celebration,
indoor and outdoor golf course facilities. Chandni Banquet Hall. For appointment, call today at 905-458-8888, 905-458-8888, or visit chandnivictoria.ca. Chandni.
ताजा सब्जियां ली तुहाडा अपना फार्म कैलगर सब्जी फार्म, जिथे तुसी ले सकदे हो निखरे पौधे, मिट्टी, गमले अते हर तरह दे फुल ते सब्जियां दी पनीरी. अपने घर विच कोई भी सब्जी या फुल दे पौधे उगाण लई कैलडन सब्जी फार्म ते आओ. असी सवेरे 9 बजे तो शाम 8 बजे तक तुहाडी सेवा लई हाजिर हां. 12050 एयरपोर्ट रोड कैलडन, जां तुसी फोन करो 9058409000, 905-840-9000.
والیا ٹریفک لیگل سروسز سے جناب آر ایس والیا.
کیئرلیس ڈرائیونگ,
سپیڈنگ یا پھر ایکسیڈنٹ,
فیل ٹو ریمین اسٹاپ ایٹ دا سین,
ریڈ لائٹ یا پھر سیٹ بیلٹ,
پرمٹ ڈرائیو وداؤٹ انشورنس,
ریسنگ, اسٹوڈنٹ ڈرائیونگ یا پھر کاٹ وائل یوزنگ فون,
سپیڈنگ,
آر ایس والیا آپ کی ٹکٹ سے نجات دلوائیں گے اور آپ کے پوائنٹس بھی سیو کریں گے. 9054542112, 4542112.
جی تو آج پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب, وہ آج پہنچے ہیں لاچن آذربائیجان میں. عامر, یہ جو نام ہے نا آذربائیجان, اس نے بڑا ہی پرابلم کریٹ کیا ہوا ہے انڈیا میں بھی. وہ جو اظہر الدین تھے نا, وہ جو انڈیا کے کیپٹن تھے کرکٹ ٹیم کے, اس کو بھی اظہر بولتے تھے نا, تو اب آذربائیجان اظہر, تو وہ اب ایکسپلین کر رہے ہیں کہ بھئی وہ آذربائیجان میں نہیں ہوں جس نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا, میں دوسرا آذربائیجان ہوں. تو آج شہباز شریف صاحب آذربائیجان پہنچ گئے ہیں, جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا جس وقت انڈیا اور پاکستان کا تھوڑا سا یہ لڑائی شروع ہوا تھا. جو ہے یہ اب اٹینڈ کریں گے یہاں پہ پاکستان ترکی آذربائیجان ٹرائی لیٹرل سمٹ جو ہو رہا ہے, اور یہ ان کا تھرڈ اسٹاپ ہے اینڈ فائیو ڈے ٹور ٹو بوسٹر ریجنل ٹائز اینڈ اگینسٹ انپرووکڈ انڈین اگریشن. اس سے پہلے آپ کو پتا ہی ہے وہ ترکیے میں گئے تھے اور پھر اس کے بعد ایران گئے تھے اور پھر اس کے بعد جو ہے اب آذربائیجان آئے ہیں اور یہاں سے پھر وہ جو ہیں تاجکستان جائیں گے. لاچن ایئرپورٹ جو ہے ان کو وہاں پہ ریسیو کیا آذر فارن منسٹر جو ہیں جے ہم بیرموف اور پاکستانی امبیسڈر ٹو آذربائیجان قاسم محی الدین اور دوسرے بھی ڈپلومیٹس جو ہیں وہ تھے. ان کے ساتھ ہیں اب جو اس ٹور کے اوپر جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب ہیں, عطا اللہ تارر, طارق فاطمی, طارق شریف صاحب جو ہے ان کی ملاقات جو ہے یہاں پہ ظاہر ہے کہ اب ہوئے گی ٹرکش پریزیڈنٹ پھر سے طیب اردوغان سے, آذر پریزیڈنٹ الہم علی ایف سے, تاکہ جو ہے وہ اس سمٹ کے اندر جو ہے وہ سارا فائنڈ آؤٹ کیا جا سکے کہ واٹ از دا وے فارورڈ اور ریجن کے اندر ہم کو پیس کیسے لانا ہے. اور جو ہے شہباز شریف صاحب کی پھر ملاقات جو ہے جو پریزیڈنٹ ہیں علی ایف صاحب ان کے ساتھ بھی ڈیٹیل میں ہوئے گی. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہے جی وہ اب ملاقاتیں کر رہے ہیں ایرانین آرمڈ فورسز چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل محمد باگیری کے ساتھ ایٹ جنرل ہیڈ کوارٹرز ان تہران. انفیکٹ ان کی کل ہی تھی ملاقات اور آج تو اب وہ پرائم منسٹر کے ساتھ ہی ہے آذربائیجان میں. آئی ایس پی آر کے مطابق دونوں نے ریجنل جو سیکیورٹی ہے اس کے اوپر بات کیا اینڈ ٹو انہانس دا ملٹری ٹو ملٹری کوآپریشن, اور یہ جو سیکیورٹی میکانزم ہے خاص طور پہ بارڈر کے بڑے مسائل ہیں انڈیا اور سوری پاکستان اور ایران کے, اس کو بولا کہ ہم کیسے سٹیبل کر سکتے ہیں. جس وقت منیر صاحب پہنچے تو ان کو بہت ہی وارم ویلکم دیا گیا, سیرمونیل گارڈ آف آنر دیا بائی ایرانین آرمڈ فورسز, اور اس کے بعد جو ہے منیر صاحب کا ملاقات آیت اللہ علی خامنائی جو کہ ایران کے سپریم لیڈر ہیں ان کے ساتھ اور پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان کے ساتھ بھی ہوئی, اور انہوں نے جو ہے اسی طرح ملاقاتیں کی ہیں ترکیے میں جب گئے تھے تو ان کے بھی آرمڈ فورسز کے چیف کے ساتھ, اور اب یہاں پہ جو آذربائیجان میں آئے ہیں اس میں بھی وہ کریں گے. یہ ایک بہت ہی آج خوفناک خبر پاکستان میں آئی ہے کہ بہت ہی لارج سکیل گلوبل ڈیٹا لیک جو ہوا ہے اس میں پاکستانی بھی 184 million اکاؤنٹس جو ہے وہ ان کی ڈیٹیلز لیک ہوئی ہے. اکارڈنگ ٹو نیشنل سائبر ایمرجنسی ریسپانس ٹیم انہوں نے سٹیزنز کو کہا کہ امیڈیٹلی اپنے سوشل میڈیا کے پاسورڈز جو ہے چینج کر دو بیکاز آف دس بریچ, کیونکہ آپ کے یوزر نیمز, پاسورڈز, ای میلز اور جو ایسوسیٹڈ یو آر ایل سروسز ہے فرام گوگل, مائکروسافٹ, ایپل, فیس بک, انسٹا, اسنیپ چیٹ اور جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ پورٹلز اور بینکس اور ہیلتھ کیئر پلیٹ فارمز جو ہیں ورلڈ وائڈ اس کا آج لیک ہوا ہے, جس کا کہ افیکٹ پاکستان کے اوپر بھی ہوا ہے. اسکیمرز جو ہیں انہوں نے وہ کہتے ہیں جی یوز کر سکتے, انہوں نے یوز کیا ہے انفو اسٹیلر میل ویئر جو کہ بہت ہی ملیشیس سافٹ ویئر ہے جو کہ سینسیٹیو انفارمیشن جو ہے وہ لے کے اور کمپرومائز کر دیتا ہے آپ کے سسٹم کو. انہوں نے کہا جی کہ امیڈیٹ ایکشن لینے کا ضرورت ہے تاکہ اس کے جو ایسوسیٹڈ رسکس ہے اس سے آپ بچ سکے. آج علیمہ خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ کچھ انسین فورسز ہے جو کہ کانسٹنٹلی نیگوشیٹ کر رہی ہے اور عمران خان کے فریڈم کے اگینسٹ ہے, اور لیکن پھر بھی ہم ولنگ ہے ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے. ظاہر ہے وہ انسین جو فورسز ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہے, انہی کا وہ ذکر کر رہی تھی لیکن اسٹیبلشمنٹ نہیں بولا. آج جو اسلام آباد میں وہ بات کر رہی تھی میڈیا سے تو انہوں نے کہا جی کہ ججز کو بھی بہت زیادہ پریشرائز کیا جا رہا ہے خان کے کیسز میں, اور ایسا ہوتا ہے کہ ہم پیٹیشنز ڈالتے ہیں اور اس کے کاز لسٹ بھی آ جاتے ہیں لیکن وہ بہت ہی مسٹیریسلی غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ ہڈن ڈائریکٹیوز جو ہے یہ کون دے رہا ہے جوڈیشری کو کہ وہ یہ ایکشن نہ لے؟ ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کوئی ہو تو آپ کو چھپنے کا ضرورت نہیں ہے, ہم خان کی بہنیں آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھئی اس نے کیا کیا ہے, آپ کو کیا نقصان پہنچایا ہے, اور آپ جو ہے ہم کو بتاؤ. اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ڈیل نہیں کرے گا, وہ پرزن میں ہمیشہ کے لیے رہنے کو تیار ہے لیکن وہ ان ٹائرنٹس کے آگے بالکل نہیں جھکے گا. تو انہوں نے کہا جی یہ وہی لوگ ہیں جو کہ پارلیمنٹیرینز کو بھی تھریٹن کر رہے ہیں کہ اس کے خان کے حق میں نہ بولو, تو میں ان کو بولتی ہوں کہ ڈائریکٹلی ہم سے آ کے بات کرو اور یہ بیہائنڈ دا سینز انفلوئنس ڈالنے کا ضرورت نہیں ہے. خان جو ہے وہ ڈیموکریسی کے لیے کھڑا ہے اور وہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کبھی بھی کام نہیں کرے گا, تو آپ اس کو ریلیز کرنے کے لیے اتنا ڈر کیوں رہے ہیں؟ تو اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کے پی کے جو چیف منسٹر ہے علی امین گنڈاپور نے, انہوں نے بھی آج मीडिया के सामने जो है फेडरल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा बुरा भला कहा और जुडिशरी को और अपोनेंट्स को। उन्होंने कहा जी 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, हम इसके साथ खड़े रहेंगे, इसको डस्टबिन के डब्बे में फेंकेंगे। इसके अलावा फरवरी 8 का जो इलेक्शन था वो बिल्कुल रिग्ड था, ये ट्रेटर्स जो है ये इन्होंने हमारा जो है वो चोरी किया है मैंडेट। और उन्होंने कहा जी नेक्स्ट केस हियरिंग पे जब मैं जून 5 को आऊंगा बिफोर ईद तो उस वक्त मैं बताऊंगा कि ये जो पाकिस्तान के लॉज है ये कैसे मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। और नो मैटर व्हाट हमारा ये जो मूवमेंट है पीटीआई का ये बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा, हम कल भी आज भी और हमेशा खान के साथ खड़े रहेंगे। और ये फाइट जो खान कर रहा है वो हमारे लिए नहीं है, मुल्क के लिए और हमारे आने वाले बच्चों के लिए है। इमरान खान जो है उन्होंने अब अर्ज किया है अपनी पार्टी को और सपोर्टर्स को कि एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट जो है उसको ऑर्गेनाइज किया जाए और ये जो गवर्नमेंट है इसको चैलेंज किया जाए। अपने सोशल मीडिया मैसेज में बिहाइंड बार्स एक्स के ऊपर उन्होंने लिखा जी कि मैं चाहता हूं कि पार्टी और वर्कर्स और सपोर्टर्स जो है वो बहुत ही विगर के साथ एक कंट्री वाइड मूवमेंट जो है वो चलाए और मैं ये कहना चाहता हूं पाकिस्तान को टू राइज और सिर्फ इस्लामाबाद ही नहीं बल्कि मुल्क के हर कोने से लोग आए। और जो है ये इसके अलावा ये जो बातें चल रही थी बहुत सारी कि जी बैक चैनल टॉक्स हो रहे हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो वो शायद जो है कोई डील एक्सेप्ट कर लेंगे अपने रिलीज होने के लिए। खान साहब ने फिर से सब ये सजेशंस को डिसमिस किया, उन्होंने कहा कि मैं टायरेंट्स के आगे बिल्कुल नहीं झुकूंगा ना मैं ये इनजस्टिस जो है वो एक्सेप्ट करूंगा, चाहे मुझे अपनी सारी जिंदगी जेल में क्यों ना गुजारनी पड़े मैं इस ओप्रेसिव और अथॉरिटेरियन रिजीम के सामने बिल्कुल नहीं झुकूंगा। उन्होंने कहा जी कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और उस रूल ऑफ लॉ के अंडर पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है वो कंटिन्यू रहेगी। पीटीआई जो है वो उसने बहुत दफा कंप्लेन किया है कि जी ये गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा उसके वर्कर्स के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहा है, लेकिन जाहिर है कि आपको पता है ये गवर्नमेंट कहां सुन रहा है। तो डजन्स ऑफ उसके लीडर्स जो है उसको भी डिटेन किया हुआ है। खान साहब ने कहा कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट जो है हमारा हक है जो और वो हमारे पास अब वही एक ऑप्शन रह गया है तो उसको हम जो है वो करेंगे। कल जो मैंने आपको मोदी जी का बयान सुनाया था जो कि उन्होंने गुजरात में बड़े उसमें कहा था कि रोटी खाओ मुझसे पाकिस्तानियों वरना मेरी गोली तो है ही, उसके ऊपर आज पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा कंडेम किया है लश्कर मोदी को। और ये जो इनको इस्लामोफोबिया होता है ना एक तो इनको जो है पाकिस्तानोफोबिया हो गया, मैंने आपको बताया बड़ी दफा बड़ा एग्रेसिव कैंसर है ये जो है ना पाकिस्तानोफोबिया, ये इनके बोन्स में पहुंच गया इसका इलाज कोई नहीं है तो उससे सफर कर रही है ये सारी लश्कर मोदी जो है। तो अंडर पाकिस्तानोफोबिया जो इन्होंने ये वो जो कल दिए थे उस पर फॉरन ऑफिस ने आज बहुत ज्यादा रिएक्ट किया। उन्होंने कहा जी कि ये जो इन्होंने वार्निंग दिया है पाकिस्तान के सिटीजन्स को कि एलिमिनेट करो टेरर और वरना तुमको बुलेट खाना पड़ेगा, ये वायलेट करता है यूनाइटेड नेशंस का चार्टर जो अर्ज करता है मेंबर स्टेट्स को कि वो बिल्कुल पीसफुल तरीके से अपने जो है सेटल करें मामलात और एक दूसरे को ना तो थ्रेट्स दे ना तो फोर्स यूज करें। फॉरेन ऑफिस ने कहा जी कि पाकिस्तान जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ये रिमार्क्स जो है ये इसको बिल्कुल थिएट्रिकल समझता है और वो जो वहां पे कैंपेन चल रही थी रैली में उसके ऊपर ये जो है बात कर रहे थे, लेकिन हम सोचते थे कि एक न्यूक्लियर हेड का स्टेट का जो हेड है वो जरा थोड़ा सा सोबर रहेगा थोड़ी सी सोब्राइटी दिखाएगा, लेकिन उसने दिखाया नहीं। उन्होंने कहा जी कि आपके जो कॉमेंट्स है वो वायलेट करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को, ये रेकलेस है प्रोवोकेटिव है और आपके अपने खुद के मुल्क में जो राइट अब्यूसेस है और जो आप डेमोग्राफिक चेंजेस करना चाह रहे हो इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर पे उससे आप ध्यान हटाना लोगों को चाहते हो ना, तो इसलिए क्योंकि आपको पता ही है कि बिहार के अंदर अक्टूबर या नवंबर में जो है इलेक्शंस आने वाले हैं। तो अब जब जब इलेक्शंस आते हैं तो वो मोदी जी का जो है ना ये पाकिस्तान का रेटरिक जो है वो शुरू हो जाता है, तो वो कहते हैं कि जी ये इस तरह की जो है वो बातें शुरू कर देते हैं, तो इसलिए जनाब जो है वो पता ही होता है लोगों को कि अब मोदी जी जो है वो इस तरह की बातें करेंगे। इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्ट्री है जनाब उसने आज अप्रूव किया है एक फ्रेमवर्क टू बिल्ड मोस्ट एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर जेट्स। आज ये फॉरन जो डिफेंस मिनिस्ट्री है इंडिया की उसने ये आज बताया, उन्होंने कहा जी स्टेट रन जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है वो ये प्रोग्राम आगे बढ़ाएगी और अभी थोड़े ही अरसे में बुलाएगी इनिशियल इंटरेस्ट फ्रॉम डिफेंस फर्म्स और सिर्फ प्राइवेट ही नहीं स्टेट ओन्ड ही सॉरी सिर्फ स्टेट ओन्ड ही नहीं प्राइवेट जो कंपनियां हैं आर्म्स बनाती है उनको बुलाएंगे और एक प्रोटोटाइप हम चाहेंगे कि वो वॉर प्लेन बनाए जिसके के अंदर ٹوئن انجن ففتھ جنریشن جو ہے وہ فائٹر کا وہ نظر آئے، یعنی کہ امیج، یعنی کہ وہ ہونا چاہیے امیج نظر آئے ایسے. تو انڈین ایئر فورس جو ہے انہوں نے ابھی بہت سارے اسکواڈرنز آپ کو پتا ہی ہے فرینچ اور رشین لیے تھے، اور فارمر سوویت ایئر کرافٹ جو تھے وہ بھی لیے تھے، لیکن اب وہ ایجنگ ہو رہی ہے ان کی، اور جو ہے اس کی وجہ سے اب ظاہر ہے کہ 6 طیارے تو پاکستان نے مار بھی گرائے ہیں، تو ظاہر ہے اب کمی ہو گئی ہے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کے پاس جو چائنیز ایڈوانس وار پلینز ہے J-10، جس نے کہ ابھی ان کے رافائل بھی گرائے تھے اور باقی کے بھی جو طیارے گرائے تھے، ایک سکوک گرایا تھا، ایک مگ گرایا تھا، تو اس لیے ہم کو بھی اب ہائی اینڈ جو ہے وہ طیارے چاہیے ہے. منسٹری نے کہا کہ ہم بڈز اب اوپن کر دیں گے کچھ دنوں کے بعد. انڈین ایئر چیف مارشل جو ہے امر پریت سنگھ، انہوں نے بہت زیادہ کریٹیسائز کیا تھا ہندوستان اور نوٹیکلز کو کہ وہ بہت سلو طریقے سے ان کو تیجس ایئر کرافٹس دے رہا ہے جو کہ 4.5 جنریشن فائٹر ہے، لیکن تیجس اس لیے ان کو دیر سے ملا تھا. ہندوستان ایئر نوٹیکلز نے کہا تھا کہ انجنز جو ہے ہم کو امریکہ سے جنرل الیکٹرکس والے بھیجتے ہیں اور وہ وقت پہ نہیں بھیج رہے ہیں، تو اس لیے ہم کو جو ہے یہ بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے. اچھا جناب، کل ہم نے آپ کو بتائی تھی، ایک خبر سنائی تھی کہ یہ جو مودی جی بڑے جوش سے کہہ رہے ہیں کہ جی اب تو ہم جاپان کو آگے لے کر سب کو پیچھے چھوڑ دیں گے، ہم آگے نکل جائیں گے اور ہم 4th نمبر پہ اب آ جائیں گے. کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں وہ. آج ہم ایک اور آپ کو رپورٹ بتا رہے ہیں جو آپ کو اگین بتائے گی کہ یہ کتنا ہی امپاسبل ہے کہ وہ 4th نمبر پہ آ جائے اور جاپان کو پیچھے چھوڑ دے اور وہ ہو جائے. تو یہ آج کی بھی آپ، اور اگین آئی ایم ٹیلنگ یو کہ کل بھی جو رپورٹ تھی ساری کی ساری جو انڈین جو اکانومسٹ ہے وہ کہہ رہے تھے، اور آج کی بھی ساری رپورٹ انڈین اکانومسٹ ہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کی تو وہ بات مانتے نہیں ہیں. نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ کو وہ کہتے ہیں جی یہ تو بائس ہے، انڈیا کے خلاف ہے. باقیوں کو وہ کہتے ہیں جی یہ تو انڈیا کی ترقی دیکھ نہیں سکتے ہیں، ایز اف انہوں نے مطلب جائیداد بننی ہے مودی جی دی بریگیڈ دے نال ہیں جی، تو جو کوئی جائیداد کا شاید جھگڑا چل رہا ہے مودی جی کا اور باقی دنیا کا، تو کسی کی بات تو مانتے نہیں ہیں. تو ہم اسی لیے انڈیا کے ہی جو ہندوستان کے خود کے جو ایکسپرٹس ہیں، اکنامک ایکسپرٹس، ان کا ہم ڈیٹا لے کر آتے ہیں کہ وہ کیا بول رہے ہیں اس وقت انڈیا میں. ٹھیک ہے جی، انڈیا کا گروتھ جو ہے وہ اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ آپ پری میچور سیلیبریشنز جو ہے مودی جی نے شروع کر دیا ہے کہ جی ہم تو 4th نمبر پہ پہنچ جائیں گے. اور لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ جو یہ اکانومی کا جو سب سے بڑا میجر ہوتا ہے وہ پر کیپٹا جی ڈی پی ہوتا ہے جو کہ آپ کو بتاتا ہے. تو انڈیا کا، عامر ذرا کمپیرزنز اب سننا، انڈیا کا پر کیپٹا جی ڈی پی جو ہے وہ $2,880 ہے، اینڈ دیٹ آلسو اکارڈنگ ٹو آئی ایم ایف، جس کو آپ خود فیڈ کرتے ہیں. کتنا ہے انڈیا کا؟ 2,880. چائنا کا کمپیئر ٹو دیٹ از $13,690. اینڈ جاپان، جس کو آپ بول رہے ہیں جی ہم پیچھے چھوڑ دیں گے، $33,960 جو ہے اس کا پر کیپٹا جی ڈی پی ہے. ٹھیک ہے جی، ایک تو پہلی تو فکر یہ آ گئی. تو یہ جو کی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، یہ پر کیپٹا انکم آپ کا ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ جی آپ کدھر کھڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو پرچیزنگ پاور پیرٹی ہوتی ہے، جس کو پی 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 ریٹنگ کہتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ 100 کنٹریز کا جو ڈیٹا ہم نے نکالا ہے، وہاں پہ کہیں دور دور تک ہندوستان جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے. اور انڈیا کی انتہائی لارج پاپولیشن ہے، 1.4 بلین لوگ ہے. اس کی وجہ سے جو جی ڈی پی گینز، کوئی جو 2-4 لوگ، یعنی کہ جو مودی بریگیڈ کے لوگ ہے، ادانی امبانی وغیرہ، وہ آ بھی جائے تو یہ گینز سارے ڈائلیوٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو آپ کا جو انفارمل جو اکانومی ہے یا انفارمل جو امپلائمنٹ ہے، جو کہ 90% آف ورک فورس ہے. تو یعنی آپ کتنے امیر لوگ دیکھ رہے ہو؟ ہارڈلی 2-3%، کیونکہ 10% میں بھی وہ امیر نہیں ہے. 90% آپ کا جو ورک فورس ہے وہ انفارمل امپلائمنٹ میں ہے، لو فیمل ورک فورس پارٹیسپیشن ہے. جیسے کہ ہم نے آپ کو کل کی رپورٹ میں بھی بتایا تھا کہ عورتیں تو بیچاری اب دیکھ بھی نہیں رہی ہے. 26% ہے انڈیا میں ورسز اے گلوبل 47%. تو یہ لمٹ کرتی ہے پر کیپٹا گین کو. اینڈ دیز آر آل دا فگرز، یہ جو ابھی تک کے میں نے آپ کو بتائے ہیں، دس از اکارڈنگ ٹو دیئر ون آف دیئر ٹاپ اکانومسٹ سچن آنند شکلا، یہ ان کا سارا جو ہے وہ ڈیٹا ہے. اچھا، اب اس میں انڈیا نے کہا جی کہ ہم 4 ٹریلین اکانومی بن جائے گے، اور یہ اس کے بارے میں کہا گیا جی کہ یہ جو نیتی آیوگ، یہ جو ان کا تھنک ٹینک ہے، اس کے سی ای او بی وی آر سپرامنیم نے جو پریس کانفرنس کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ میرا ڈیٹا نہیں ہے، یہ آئی ایم ایف کا ہے. IMF का अपना खुद का कुछ डेटा नहीं होता है, IMF को जो डेटा आप प्रोवाइड करते हैं ना, कोई भी कंट्री प्रोवाइड करता है उसके ऊपर वो बात करता है, वो अपनी कोई डिगिंग नहीं करता। तो ये इन्होंने बात की थी, इस चीज को ये नीति आयोग के CEO जो है ये BVR सुप्रा, इसकी बात उठा ली थी मोदी जी ने कल, जो वो बड़े ऐसे ऐसे मुक्के हिला हिला के बात कर रहे थे ना कि अब तो हम जो है जापान को पीछे छोड़ देंगे। अब इसने हिंदुस्तान का ही अपना जो अदारा है ऑल्ट न्यूज ने जी IMF का भी सारा डाटा निकाला है, और जो सुब्रमण्यम साहब कह रहे हैं वो भी सारा डाटा निकाला है, और उसके ऊपर वो कह रहे हैं जी कि IMF की जो लेटेस्ट पब्लिकेशन है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है, जो कि रिलीज हुई थी April 22, 2025 में, आमिर अब सुनो जरा, इनका अपना अदारा कह रहा है, वो कह रहा है नो वेयर इन दैट रिपोर्ट, IMF की भी नो वेयर इन दैट रिपोर्ट हमको इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी दिख रही है। अपना इनका जो अपना इनका आधार है वो कह रहे जी उसकी हमने एक्सेल शीट निकाली है पूरी, उसमें हमको कहीं नजर नहीं आ रहा है कि ये सरपास कर सकेगा जापान को। वो कहते हैं जी ये 190 पेज का रिपोर्ट है और इसके अंदर इन्होंने अल्फाबेटिक मैनर के अंदर सारे कंट्रीज को लिखा है फ्रॉम 2020 to 2029, और इसके अंदर वो कह रहे हैं कि एस्टिमेट है हमारा, हम हर हाल में नहीं कह रहे, एस्टीमेट है कि शायद जो है इंडिया जो है वो राइज करेगा। तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में जो इंडिया का GDP था वो 3.91 ट्रिलियन था अकॉर्डिंग टू IMF, अगेन जिसको फिगर आप खुद फीड करते हैं, और जो इंडिया का एस्टीमेट उन्होंने लगाया था कि ये रीच करेगा शायद है, ये एस्टीमेट है 4.18 ट्रिलियन को बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026। तो 2024 में ऑलरेडी जापान का GDP जो था 7.03 ट्रिलियन था, और वो कहते हैं जी ये और भी बढ़ जाएगा बाय द एंड ऑफ 2025। तो इसलिए वो कहते हैं जी ये ऑल्ट इंडिया न्यूज वाले कि अगर आप बहुत क्लोजली IMF का रीडिंग करेंगे तो इंडिया सरपास नहीं कर सकता जापान को इन GDP, इट्स ओनली एस्टिमेटेड, ये एस्टिमेट है कि शायद वो करेगा मे बी एट द एंड ऑफ 2026 फाइनेंशियल ईयर। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमिस्ट एक और भी है अरविंद विरमानी, उनको भी जब पूछा गया, उनको कहा जी कि ये तो मोदी जी भी और सुब्रमण्यम साहब भी कह रहे हैं कि हम तो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी मिल जाएगी तो बन जाएगी, तो आमिर उन्होंने क्या कहा, अरविंद विरमानी जो इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा नहीं शायद उन्होंने कोई वर्ड्स मिस कर दिए होंगे, उनसे कोई वर्ड्स मिस हो गए होंगे क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। तो IMF का जो है वो ये डाटा कहीं पे भी उन्होंने कहा जी कि ये नहीं है, वो सिर्फ प्रोजेक्शंस देता है और IMF अपना खुद का कोई डाटा हर मुल्क में जाके कलेक्ट नहीं करता, वो उसको हर मुल्क की गवर्नमेंट देती है। तो जनाब ये है, तो जो लश्कर मोदी जो है उसको हम यही बोलना चाहते हैं कि जरा ठंडे नीवे नीवे होके चलो, इतना ज्यादा मच्छरन दी, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, इतना मच्छरन की जरूरत नहीं है, जरा थोड़ा जहा ना हौले होके चलो। अच्छा जी, हमारी शकीरा वका वका ए है जी, 48 ईयर्स की है, यहां पे आई हुई थी बेल सेंटर मॉन्ट्रियल के अंदर अपना कॉन्सर्ट करने के लिए, बट शी हैड अ वेरी नैस्टी फॉल, और ये अपना जो टूर है, अब ये स्पेनिश में है, पता नहीं आई एम प्रोनाउंसिंग इट वेल, मू जीरेस या नो जोरेन टूर जो है उनका, वो लेकर ये आई हुई थी और यहां पे अपना बड़ा जबरदस्त किस्म का परफॉर्मेंस कर रही थी और अपना आइकॉनिक नंबर गा रही थी वेयर एवर, तो अचानक से ये गिरी, जो कि वीडियो एक्स के ऊपर आई है, वो देखा जा रहा है कि बड़ी वो एनर्जी से कर रही थी परफॉर्म, लेकिन अचानक से उसने अपना बैलेंस लूज किया और वो स्लिप की स्टेज से और गिरी, लेकिन फिर एकदम से उसने अपने आप को कंपोज किया, खड़ी हुई, स्माइल किया और फिर अपना कंटिन्यू किया। पाकिस्तानी एक्टर अदनान सिद्दीकी जो है वो, उन्होंने जनाब एक वो फ्लाइट जो है प्राइवेट एयरलाइन की कराची से लाहौर उन्होंने लिया था और बेतहाशा उस फ्लाइट के अंदर जो है वो टर्बुलेंस आया क्योंकि बहुत सीवियर स्टॉर्म जो है वो उधर आ गया था और ये जो तैयारा था ये उतरने की कोशिश कर रहा था लाहौर के अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, लेकिन बहुत ज्यादा जो है उसमें टर्बुलेंस था और लग रहा था कि जैसे अभी क्रैश किया। तो जो उनके साथ लोग बैठे थे वो कह रहे थे कि जी ये अपना गुड बाय नोट लिख रहा था। तो इन्होंने भी आज जो है अपने सोशल मीडिया के ऊपर ये डाला है, उन्होंने कहा जी कि कभी कभी बहुत सारा शोर रूटीन और इल्यूजन ऑफ कंट्रोल जो आपका होता है वो सब गायब हो जाता है जब आपके सामने आपको नजर आता है कि आपकी जिंदगी कितनी मामूली और फ्रेल है और कितनी आम सी है। और फिर वो जो पूरा वो जो जहाज ऐसे ऐसे डोल रहा था उसके अंदर की भी उन्होंने बड़ी टेरिफाइंग वीडियोज कुछ डाली। उन्होंने कहा उस वक्त मैं सिर्फ अपनी बीवी और बच्चों का और फैमिली का सोच रहा था और बहुत ही स्केरी किस्म का जो था वो मामला था और मैं कह रहा था कि काश मैं एक आखिरी दफा उनको हग कर सकता और उनको फेयरवेल बोल सकता। बहरहाल जी एनीवेज वो तैयारा जो आराम से उतर गया। पाकिस्तानी एक्ट्रेस जो है शजील शौकत, उन्होंने कहा जी कि ये जो इंडिया पाकिस्तान का भी रिसेंटली टेंशन शुरू हुआ है उसकी वजह से उन्होंने बहुत ज्यादा सफर किया है क्योंकि अभी वो काम करना शुरू कर रही थी इंडियन वेब सीरीज के ऊपर और अब ये सारे का सारा काम जो है स्टैंड स्टिल पे हो गया है। और वो कहती है जी बिल्कुल डेफिनेटली अगर मुझे बॉलीवुड में अपॉर्चुनिटी मिलेगा और मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी तो मैं जरूर जाके वहां पे काम करूंगी। और उन्होंने बहुत ज्यादा एतराज किया जी फवाद खान के ऊपर कि वो अभी जो कॉन्फ्लिक्ट इंडिया पाकिस्तान का था उसमें वो क्यों खामोश बैठे रहे। मतलब काम का तू अपनी गल कर बाजी, उसमें बेचारे नु क्यों घसीट रही, उसकी अपनी भी तो फिल्म बेचारी दी रुक गई है ना। अबीर गुलाल पाकिस्तान के स्पिनर जो स्पिनर है जी फीमेल सादिया इकबाल, वो तो जी उनको बड़ी जबरदस्त किस्म की अब जो है अपॉर्चुनिटी मिली है। शी हैज बिकम नंबर वन ऑन आईसीसी विमेन्स T20 बोलर रैंकिंग और जो इन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी आईसीसी विमेन्स T20 वर्ल्ड कप में लास्ट ईयर में एंड एज अ रिजल्ट शी हैज क्लेम्ड द नंबर वन पोजीशन। उसकी वजह यह भी है कि इंग्लैंड स्पिनर जो है सोफी एक्लेस्टोन, उन्होंने मिस किया था जो अभी रिसेंट T20 सीरीज था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। एक्लेस्टोन एज अ रिजल्ट जो है वो फोर्थ नंबर पे आ गई है। इसके अलावा इंग्लैंड की पेसर्स जो है लॉरेन बेल वो 13th नंबर से जो है 6th पोजीशन पे आ गई हैं और जो दूसरी हैं बॉलर्स लिंसी स्मिथ वो क्लाइम करके 37 स्पॉट्स से 37 स्पॉट्स क्लाइम करके 41st पोजीशन पे आ गई हैं। आईसी वॉन्ग जो हैं 32 प्लेसेस ऊपर आके 62nd पोजीशन पे आ गई है। और बैटिंग में वेस्टइंडीज की जो कैप्टन है हेली मैथ्यूज, वो उनकी जो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी इंग्लैंड के खिलाफ और उन्होंने 177 रन्स बनाए थे एट एन एवरेज ऑफ 88.50 इन 3 मैचेस। शी इज एट द टॉप ऑफ द बैटिंग रैंकिंग इन आईसीसी रैंकिंग्स। पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो है मोहम्मद वसीम जूनियर, वो अब जो बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज अब शुरू होने वाली है कल से, उसमें उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो बिल्कुल अनसर्टन रहेगी। वसीम इज 23 लेकिन उनको सफर किया था उन्होंने साइड स्ट्रेन ड्यूरिंग PSL 10 और उसके बाद वो इंजरी से जो है रिकवर नहीं कर पाए हैं और डॉक्टर्स ने उनको 1 वीक का रेस्ट बोला है एंड ही इज गोइंग टू अंडरगो रिहेबिलिटेशन एट नेशनल क्रिकेट अकेडमी, तो इसलिए शायद वो कल नहीं खेल पाएंगे। PCB ने जनाब जैसे कि आमिर ने आपको बताया यह बड़ी एक स्टार स्टडेड सेरेमनी, नहीं ये नहीं खबर सुनाई, हाँ आमिर ने आखिरी खबर सुनाई, एक बड़ी जनाब जो है स्टार स्टडेड कमेंट्री पैनल जो है T20 सीरीज जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में हो रहा है उसमें उन्होंने आज जो है अनवेल किया है 5 मेंबर कमेंट्री टीम जो है उसमें फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सोहेल और रमीज राजा रहेंगे। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेटर्स बाजिद खान और फॉर्मर बांग्लादेश इंटरनेशनल अथर अली खान और फेम्ड क्रिकेट एनालिस्ट माइक हेजमन जो है वो ये सारा जो है बनाएंगे कमेंट्री का टीम और जैनब अब्बास जो है वो सर्व करेंगी या सीरीज प्रेजेंटेबल। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज जिसके बारे में आमिर ने बात की है कि जो हमारा ट्रॉफी है अपकमिंग 3 मैच T20 सीरीज का बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, वो अब जो है वो आज अनवेल किया था एट कदाफी स्टेडियम और पाकिस्तान के स्किपर जो है सलमान अली आगा और उनके जो बांग्लादेशी काउंटर पार्ट हैं लिटन दास, वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया इन अनवेलिंग सेरेमनी एट द रूफ टॉप ऑफ कदाफी स्टेडियम लाहौर। सीरीज जो है कल से जैसे हमने आपको बताया शुरू हो रही है लेकिन बाकी के 2 मैचेस जो है वो 1 मई 30 और 1 जून 1 को रहेगा और ये सीरीज जो है दोनों ही जो टीमें हैं बड़े बेचारे डिसमल नोट पे शुरू कर रहे हैं इसलिए कि पाकिस्तान ने सफर किया था 4-1 डिफीट अवे अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन मार्च और जो टाइगर्स थे उनको डिफीट हुआ था फर्स्ट एवर बायलैटरल सीरीज अगेंस्ट UAE लास्ट वीक और ये दोनों जो है अब इन्होंने 19 टाइम्स T20 खेला है, पाकिस्तान उसमें से 16 टाइम्स जीता और बांग्लादेश 3 दफा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए लिटन दास ने कहा जी कि वी आर लीविंग दैट बिहाइंड एंड वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन पाकिस्तान के साथ मैच।
बिल्कुल जनाब ये T20 सीरीज जो है वो शुरू होने लगी, देखते हैं क्रिकेट की दुनिया में नया क्या होता है। اور بنگلہ دیش کے ساتھ یہ ٹی ٹوینٹی میچز کی سیریز جو ہے وہ پاکستان کھیلنے جا رہا ہے. چلیں جناب کچھ کرپٹو کی خبریں بھی شامل کر لیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنا سیگمنٹ کرپٹو کی نیوز بھی اب شامل کرتے ہیں. پاکستان میں تو اب باقاعدہ طور پر اس پر قانون سازی ہو رہی ہے اور ثاقب صاحب کو جو ہے وہ امپورٹ کر لیا گیا ہے. شاید جی اب تو باقاعدہ ان کو
نہیں, یہ تو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا تھا, ثاقب صاحب کو فیبروری میں ہم نے خبر دی تھی.
ہاں لیکن اب تو باقاعدہ ان کو,
ابھی میں نے کل بھی بتایا تھا,
گو ہیڈ دے دیا.
نہیں گو ہیڈ نہیں ان کو دیا, بڑے دنوں سے دیا ہوا ہے ان کو, فیبروری سے ہی دیا ہوا ہے کیونکہ ان کو فائنانس منسٹر نے ان کو کیا تھا. کل ان کو جو ہے پرائم منسٹر کا جو ہے اسپیشل انوائے بنا دیا, اسسٹنٹ بنا دیا گیا آن کرپٹو. سو ہی ابھی لاسٹ منتھ بھی جس وقت یہ سارے جو میں بتا رہی تھی کل بھی کہ وہ جو ٹرمپ صاحب کی فیملی کے بھی لوگ آئے ہوئے تھے اور بائنانس کے جو آئے انہوں نے بلائے, انہوں نے انوائٹ کیا ان کو, وہ جو چائنیز ہیں ان کو کہ آپ آ کے اب وہ ڈیولپمنٹ سٹیج میں ہے پاکستان,
اس کو ریگولیٹ کیسے کریں.
اب وہ ڈیولپمنٹ کی سٹیج میں آ گیا پاکستان
بالکل. اور کل ایک اچھی خبر یہ بھی تھی پاکستان سے جو میں نے شروع میں بھی دی آپ کے ساتھ اور جو لوگ ابھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے. پاکستان میں آپ کو معلوم ہے بجلی اس میں بہت زیادہ آپ کو کمپیوٹنگ پاور چاہیے, آپ کو الیکٹریسٹی چاہیے. تو گورنمنٹ آف پاکستان نے اس چیز کو میرے نزدیک ان کا ایک اچھا انیشیٹ ہے کہ آئی پی پیز آپ کی بجلی بناتے ہیں. اچھا آئی پی پیز کے ساتھ انفارچونیٹلی ہمارے معاہدے ایسے ہیں کہ ہم چاہے بجلی یوز کریں یا نہ کریں ہمیں پیسے دینے ہیں. تو اب گورنمنٹ کو یہ خیال آ گیا اور انہوں نے, مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ صحیح ڈائریکشن میں جاتے ہیں, انہوں نے کہا کہ 2000 میگا واٹ بجلی ایسی ہے کہ جو ہماری ڈرین ہو جاتی ہے, اس کو ہم آئی پی پی سے جو ہے وہ شفٹ کریں گے اسپیسیفکلی کرپٹو مائننگ کے لیے, بلاک چین کے لیے جس کو ثاقب صاحب جو ہیں وہ ہیڈ کر رہے ہیں, کہ آنے والے وقت میں پاکستان میں جو ہے وہ بٹ کوائنس کو جو ہے باقاعدہ طور پر ایز این انڈسٹری کے طور پر لایا جا سکے, اس کی مائننگ کی جا سکے, اس کو ریگولیٹ کیا جائے. پھر میں یہ بھی بتا رہا تھا کہ جو کرپٹو کی جو ایکسپٹینس کنٹریز ہیں جنہوں نے ایکسپٹ کیا, نمبر 1 پہ بھارت ہے, نمبر 9 پر ہم آ گئے, مطلب ہم ٹاپ 10 ایٹ لیسٹ ہم اس میں آ گئے جو کہ کرپٹو کرنسی کو جو ہے اس کو ایکسپٹینس کرتے ہیں, اس کو جو ہے وہ اپنے ملک میں. آپ نے دیکھا ہوگا نا بہت سارے اشتہارات چلتے ہیں انڈیا میں, بہت چلتے ہیں اس کے کرپٹو میں اور دوسری چیزوں میں. تو آہستہ آہستہ پاکستان میں بھی, کیونکہ بہت سے لوگوں کو ایک یہ بھی خیال ہو گیا تھا ہمارے ملک میں ظاہر ہے ہر چیز کو ہم حلال حرام میں بھی بہت ڈال دیتے ہیں,
ہر چیز حلال
حرام, بہت سی چیزوں کو اس کا یہ بھی چیلنج ہو گیا تھا کہ جی اس طرح سے کرنا یہ بیٹنگ ہے یا یہ کرپٹو کرنسی جو ہے یہ حلال ہوگی اس کی انکم نہیں ہوگی. تو یہ بھی ایک کافی سفر تھا جو پاکستان نے اس کو طے کیا باقاعدہ طور پر, اس پر بھی کام ہوتے ہوئے.
اس پہ کام اس لیے بھی ہوا ہے کہ بے شک بھارت کے ساتھ نہیں بھی تعلق ہے نا تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اب بہت بڑا ہب جو ہے نا دبئی بھی بن گیا,
دبئی بن گیا,
یو اے ای کے اندر انہوں نے بہت بڑے سینٹرز اب کھول دیے اور وہ بھی بہت زور و شور سے چل رہے ہیں. تو جن کو تکلیف ہوئے گی نا تو ان کو یہ بولیں گے کہ بھائی ہم دبئی کے کسی متوا سے جو ہے یعنی کسی جو ہے وہ جو فتوا ہم لے لیں گے, اور
میرے خیال سے آنے والے وقت میں کافی چیزیں بہتر ہوں گی.
کیونکہ ابھی کل بھی میں بتا رہی تھی کہ جو وہ تھے وہ گئے ہوئے تھے نیو یارک, گئے ہوئے تھے نا ہمارے جو ہیں وہ, تو بلال جو ہیں وہ گئے ہوئے تھے نیو یارک بھی, وہاں پہ بھی وہ بات کر رہے ہیں باقاعدہ. اور ٹرمپ صاحب کی تو اگر فیملی انوالوڈ ہے تو, کیونکہ آج بھی
ٹرمپ صاحب کا اپنا پرسنل
انٹرسٹ ہے, کیونکہ آج بھی انہوں نے اناؤنس کیا, سب نے آج بھی اناؤنس کیا کہ اب ہم کرپٹو کرنسی کو بہت تیزی سے آگے لے کے جائیں گے. تو اب ایک طرف سے تو چائنیز کمپنی آ جائے گی, ایک طرف سے امریکن کمپنی آ جائے گی, اور یہ امریکن جو آفیشلز کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت تیزی سے اس کے اوپر اب
اور بہت سیریسلی گورنمنٹ لیول پر کام ہو رہا ہے. ظاہر ہے اس میں پرائیویٹ ادارے بھی شامل ہوں گے اور یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے ہمارے ینگسٹرز کے لیے, جو خاص کر کے آئی ٹی پروفیشنل میں, کیونکہ بلاک چین جن کو معلوم ہے, بلاک چین جنہوں نے جس پہ کام کیا ہے مائننگ پر, اگر تھوڑا سا بھی کسی کے پاس علم ہے میں کہتا ہوں اگر یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے ہمارے پاکستانی ینگسٹرز کے لیے, اگر اس کو لیگلائز یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اس کی پالیسیز بن رہی ہیں, اس کا انفراسٹرکچر تیار, فریم ورک تیار کیا جا رہا ہے,
وہ انفراسٹرکچر ہی ڈیولپ کرنے کے لیے فائنانس والوں کو انہوں نے بلایا ہے.
تو میں کہتا ہوں کہ یہ آنے والے اگر 2-4 سال 5 سال میں پاکستان کے لیے ایک جو ہے نا کہ ایک ڈفرنٹ ایرا جو ہے وہ کریٹ ہونے جا رہا ہے, اور ہم رائٹ ڈائریکشن میں انشاءاللہ پاکستان جو ہے جا رہا ہے. اور ینگسٹرز کے لیے میں کہوں گا جو پاکستان میں, ان کے لیے تو یہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے کہ آپ اس کو جتنا اویل کر لیں آپ کے لیے کام ہے, کیونکہ بہت سے لوگ ابھی بچے وہاں کام کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے ان کو اس طریقے سے
ایجوکیٹ
نہیں کیا جاتا, ان کو بتایا نہیں جاتا. تو لیکن دس از دا رائٹ ٹائم جناب, آپ پاکستان میں جو لوگ بھی ہیں, دنیا بھر میں جو لوگ پاکستانی ہیں وہ اس چیز سے ضرور اویل کریں.
یہ لڑکا جو ہے نا اصل میں یہ بالکل صحیح لے کر آئے ہیں, یہ اتنا ڈائنمک ہے, اس نے کام ہی انگلینڈ میں اس کے اوپر کیا ہے, اور تم سوچو کہ اس کا نام آیا تھا फोर्ब्स 30 अंडर 30 में, और किंग चार्ल्स जो है उन्होंने इसको अवार्ड
दिया था। बिल्कुल,
तो ये बहुत डायनेमिक यंग है, ब्रिलियंट, ही इज अ ब्रिलियंट यंग मैन, और ये बिल्कुल मतलब जिसको है तो होता है ना कि इनसाइड आउट उस चीज का पता है, सो ही अंडरस्टैंड्स थिंग्स वेरी वेल, और काम भी बहुत क्लोजली फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ कर रहा है, तो इसलिए इसको तो रेड टेप का कुछ डर नहीं रहेगा। डायरेक्टली ये प्राइम मिनिस्टर के साथ भी अब जा सकता है, उसको बोलेगा कि भाई मुझे, और फाइनेंस मिनिस्टर को भी बोल सकता है, तो ही विल कट ऑल द रेड टेप, और ऐसे ऐसे काम होगा इंशाल्लाह।
जनाब हम एक टॉप ऑफ द आवर का ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जनाब किशादी जी मेरे पास बहुत सारे, हमने लास्ट वीक अनाउंस किया था कि मैं एक वेबसाइट बताऊंगा जिसमें आप
जरूर बताओ
कोर्स करते हैं, तो मेरे पास बहुत से मैसेजेस आज भी आ गए और कल भी आए थे, तो मेरे जहन से निकल गया था, बहुत माजरत। मैं आज अभी बस हम टॉप ऑफ द आवर का ब्रेक लेते हैं, मैं किसी वेबसाइट की प्रमोशन नहीं करूंगा, लेकिन अगर से किसी का भला हो जाता है तो मैं समझूंगा कि शायद मेरा भी अपना कोई
प्रमोशन नहीं है, तुम एजुकेट कर रहे हो लोगों को।
वो नियत अक्सर होते हैं ना कि लोग कहते हैं कि जी आमिर भाई ऑनलाइन बैठ के, जैसे हम कॉस्को की बात कर रहे थे, तो इज नथिंग लाइक मैं किसी की प्रमोशन कर रहा हूं।
जैसा बंदा जो है मुझे, यानी मैंने तो खुद कहा कल ओपन उसमें कि मैंने अंदर से देखा ही नहीं है कि ये कैसे, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी चीज के बारे में।
अभी बस ब्रेक लेते हैं टॉप ऑफ द आवर का, उसके बाद प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े रहिए, फिर आपके साथ कुछ टेक्नोलॉजी और आगे की चीजें, क्रिप्टो के बारे में बात करेंगे, इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, कुछ पॉलिटिक्स भी बात कर लेंगे, शाहजा जी के साथ बैठी हैं तो इनको तो छोड़ना नहीं है, तो हमारे साथ
नहीं, नहीं, लेकिन क्रिप्टो के ऊपर तुम जो अब रोज जो है ना थोड़ा थोड़ा जरूर बताया,
हम कोशिश करेंगे कि लोगों को एजुकेट कर सकें, लोगों को इस पर माइल कर सकें, लेकिन अगेन मेरा डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस,
अरे ये एजुकेशन है, दिस इज जस्ट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन।
तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारा नंबर 416-620-1778।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770